ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಏಕದಮ್ ಮಣ ಪಾವಣೆ ಮಂಡಳಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತೋ ಆಜ ಹಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಕೇ 11ವೇ ಸ್ಕಂದ ಸೇ ಪಡ್ ರಹೇ ಹೈ. 11ವಾ ಸ್ಕಂದ, 7ವಾ ಅಧ್ಯಾಯ ಔರ್ 50ವಾ ಶ್ಲೋಕ. ಗುಣೈರ್ ಗುಣಾನುಪಾದತ್ತೇ ಯಥಾಕಾಲಂ ವಿಮುಚ್ಯತಿ ನತೇಷು ಯುಜ್ಯತೆ ಯೋಗೀ ಗೋಭಿರ್ಘಾ ಇವ ಗೋಪತಿಃ. ಗುಣೈರ್ ಗುಣಾನುಪಾದತ್ತೇ ಯಥಾಕಾಲಂ ವಿಮುಚ್ಯತಿ ನತೇಷು ಯುಜ್ಯತೆ ಯೋಗೀ ಗೋಭಿರ್ಘಾ ಇವ ಗೋಪತಿ. ಗುಣೈರ್ಗುಣಾನುಪಾದತ್ತೇ ಯಥಾಕಾಲಂ ವಿಮುಂಚತಿ ನತೇಷು ಯುಜ್ಯತೆ ಯೋಗೀ ಗೋಭಿರ್ಗಾ ಇವ ಗೋಪತಿ. ಯಥಾ ಕಾಲಂ ವಿಮುಂಚತೆ ಯೋಗೀ ಗೋಭಿರ್ಗಾ ಇವ ಗೋಪತಿ. ಮಾತಾಜಿ ಬೋಲೆ. ಗುಣೇರ್ ಗುಣಾನುಪಾದತ್ತೇ ಯಥಾ ಕಾಲಂ ವಿಮುಂಚತಿ.
ಮರಾಠಿ ಮರಾಠಿ ಮದೆ ಸ್ವೀಕರ್ ಸ್ವೀಕರ್
ಗುಣೈ ಹಿ ಅಪ್ನೆ ಇಂದ್ರಿಯೋ ಸೆ ಗುಣಾನ್ ಭೌತಿಕ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯೋ ಕೋ ಉಪಾದತ್ತೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಯಥಾ ಕಾಲಂ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಮಯ ಪರ ವಿಮುಂಚತಿ ಛೋಡ ದೇತಾ ಹೈ ನ ನಹಿ ತೇಷು ಉನ್ಮೇ ಯುಜ್ಯತೆ ಫಸ್ ಜಾತಾ ಹೈ ಯೋಗೀ ಸ್ವರೂಪ ಸಿದ್ಧ ಮುನಿ ಗೋಭಿ ಹಿ ಅಪ್ನಿ ಕಿರಣೋ ಸೆ ಗಾಹ जलाशयो इव सदृश गोपति सूर्य। जिस तरह सूर्य अपनी प्रखर किरणों से पर्याप्त मात्रा में जल को वाफ बनाकर उड़ा देता है और बाद में उसी जल को वर्षा के रूप में पृथ्वी पर लौटा देता है, उसी तरह संत पुरुष अपनी भौतिक इंद्रियों से सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं का स्वीकार करता है और जब सही व्यक्ति उन्हें मांगने आता है तब वो उन भौतिक वस्तुओं को लौटा देता है। इस तरह वो इंद्रिय विषयों को स्वीकारने और त्यागने इन दोनों में ही नहीं फंसता। तात्पर्य ऐसी भक्ति भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार हेतु भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सौंपे गए ऐश्वर्य के ऊपर अपना प्रभुत्व नहीं जताता। भगवान श्री कृष्ण के भक्त को चाहिए कि वो भौतिक संपदा का केवल संग्रह न करता रहे अपितु श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को इस तरह बांट दे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन असीम रूप से फैल जाए। सूर्य से यही शिक्षा लेनी चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। एक बार जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, आपका बहुत धन्यवाद है कि पंढरपुर क्षेत्र में आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। धाम एक बहुत शक्तिशाली वस्तु है और धाम के अंदर अनंत शक्ति होती है जिसका परिणाम और अनुभव जब से हम आए हैं कल से तब से हो रहा है और आगे भी बहुत बार हुआ है जब से आ रहे हैं। सबसे पहले हम 1990 में यहाँ पर आए थे। आज जहाँ जो बिल्डिंग खड़ी है ना, जहाँ पर लोग ऐसे गोल 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 घूमते हैं फिर गोल 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 उतरते हैं, वो बिल्डिंग नहीं थी उस समय। दर्शन मंडप यानी लाइन मंडप, दर्शन मंडप नहीं, जहाँ पर लाइन लगाते हैं लोग अंदर घुसते हैं फिर वो ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, पूरी बिल्डिंग बनी हुई। वो बिल्डिंग जहाँ पर थी वहाँ पर हमारा फर्स्ट कैंप लगा था 1990 में और हमने 625 मरीज देखे थे उसके अंदर, बाहर करी लोगों को, छोटी जगह थी। और तब से लेकर आज तक हमारा ये शिविर है जो चलता रहा है, अभी पिछले साल 22 साल पूरे हो गए, 23 साल पूरे हो गए। तो पंडितनाथ की बड़ी कृपा है भगवान विट्ठल की कि उन्होंने हमको धाम में सेवा दिया है। बहुत महत्वपूर्ण बात समझने वाली यह है कि धाम में दर्शन करने जरूर आना चाहिए, लेकिन पंढरपुर क्षेत्र का जो महिमा है वो सेवा की महिमा है। यहाँ पर भगवान अपने भक्त को देखने आते हैं, इस धाम की विशेषता है। हम सबको भगवान को देखने को आना ही चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन विशेष रूप से सेवा के माध्यम से अगर हमारी ओर भगवान आकर्षित हो जाए तो विशेष करके पंढरपुर में आने का जो भाग्य है वो संपन्न हो जाएगा। ऐसी यहाँ की कृपा है, सेवा यहाँ प्रधान है। भगवान ने स्वयं ये अपने ही दिव्य लीला से यहाँ प्रकट किया है कि जहाँ पर सेवा होती है वहाँ पर मैं अपना स्थान छोड़कर सेवा करने वाले भक्त को मिलने आता हूँ। इसलिए हमारे कैंप में भी कैंप के जो शिविर के जो स्वयं सेवक हैं जो सेवा करने आते हैं वो कोई भी दर्शन के लिए भागता नहीं है, अधिक से अधिक मुख दर्शन करते हैं तो आधा घंटे में हो जाता है ब्रेक में, लेकिन लाइन में खड़े रह के नहीं आते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो वारकरी दूर दूर से चल के आते हैं उनके चरणों की भी हम सेवा करते हैं, उनके शरीर की भी सेवा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, बीमार हो जाते हैं तो उनको देखभाल करते हैं, फिट बना के वापस दर्शन करने के लिए भेजते हैं। तो जो उनके लिए मराठी बोलते हैं ना पाइपीट पाइपीट करके आ जाते हैं दूर से, उनकी सेवा करने से विट्ठल जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैंने शुरुआत की थी वो धाम के प्रभाव की, यहाँ पर विट्ठल जी का अस्तित्व जो है वो इतना इतना शक्तिशाली है कि जो भक्त जप करते हैं उनको पता नहीं आप लोगों को कितना अनुभव आया, लेकिन बहुत जप में सहजता आ जाती है धाम के प्रभाव से। धाम धामी भगवान विट्ठल भगवान जो है, हमारे विट्ठल जी और पंडरीनाथ में कोई अंतर नहीं है, उनके उपस्थिति में जप में बहुत ही सहजता आती है, बहुत त्वरित एकाग्रता आती है, बहुत त्वरित मन लगता है और लगता है और करते रहें और करते रहें और करते रहें, ये उनकी विशेष कृपा है। तो धाम में आकर दर्शन तो करना चाहिए, फिर भी अंदर से भगवान के नाम के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने का प्रयास और इच्छा करनी चाहिए, तब जाकर यहाँ आना सफल है। हमें कभी भी धाम में मत्था टेक यात्रा नहीं करनी चाहिए। पता है मत्था टेक यात्रा क्या होती है? वहाँ गए मत्था टेका, वहाँ गए मत्था टेका, वहाँ गए मत्था टेका, कुछ सुना नहीं देखा नहीं जाना नहीं, जहाँ जहाँ गए कुछ दान दे दिया मत्था टेका आगे चले गए, घर पे गए तो कुछ भी याद नहीं कहाँ गए थे, 50 जगह मत्था टेक के आए। इस यात्रा से कोई लाभ नहीं होता। लाभ तो होता है, भगवान का धाम परम सत्य है, एब्सोल्यूट है, लाभ तो होगा ही, लेकिन जो लाभ आपके अकाउंट में आ सकता था वो नहीं आएगा, क्योंकि आध्यात्मिक लाभ तब होता है जब हमारी चेतना जो है वो सही होती है, अनुकूल होती है, योग्य होती है, तो उसका लाभ पूर्ण हो जाता है। इसलिए हम जब भी यात्रा करते हैं तो यात्रा के लिए लोगों को ओरिएंट करते हैं, समझाते हैं कहाँ जा रहे हैं, वहाँ की महिमा क्या है, वो क्या देखने वाले हैं, कैसे रहना चाहिए, हर चीज़ को। उससे प्रयास एक ही रहता है कि आत्मा में जो भी शक्य है प्राप्त करना आध्यात्मिक उन्नति के विषय में वो प्राप्त हो, उसमें कुछ कमी ना हो, इतनी दूर आकर जितना लाभ मिलना चाहिए उतना मिलना चाहिए, इसी से यात्रा सफल होती है। अभी धाम में बैठकर श्रीमद् भागवत की चर्चा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, वो भी एक बड़ी भाग्य की बात है। मुंबई में भी हम करते हैं और शहरों में भी करते हैं, ये धाम में बैठकर जब श्रीमद् भागवत की चर्चा करते हैं उसमें अनन्य लाभ होता है, बड़े भाग्य की बात है। ये मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है, एक तो धाम की प्राप्ति, एक भागवत शास्त्र की प्राप्ति, एक भगवान के विग्रह की प्राप्ति, भगवान के भक्तों की संग की प्राप्ति, भगवान नाम की प्राप्ति, तुलसी देवी की पूजा करने की प्राप्ति, ये बहुत ही विशेष प्राप्ति है। ये कह सकते हैं जिसको ये प्राप्ति है वो भाग्यवान जीव है, उसका भाग्य का उदय हो चुका है। नहीं तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके ये प्राप्त होने लायक होने पर भी नहीं प्राप्त होता है तो मनुष्य जीवन का पर्पज उद्देश्य जो है वो व्यर्थ हो गया। तो दशम स्कंद के बाद 11वां स्कंद आता है, उसमें उद्धव जी और श्री कृष्ण का संवाद बहुत महत्वपूर्ण संवाद है, उसको उद्धव गीता की कहते हैं। हमारे इस्कॉन में इसके ऊपर एक इतना बड़ा ग्रंथ है उद्धव गीता, केवल 11वां स्कंद। उपदेशामृत जो ग्रंथ है हमारा रूप गोस्वामी द्वारा लिखा हुआ, वो आप अगर 11वां स्कंद पढ़ेंगे ना तो अधिकतर आपको सारी शिक्षाएं इसमें से मिलेगी। एक एक मुनि 12 जो नव योगेंद्र आए थे, नव योगेंद्र, उनको निमि राजा ने करभाजन तो लास्ट वाले नव योगेंद्र है, तो निमी राजा ने उनको एक एक को एक एक प्रश्न पूछा और उसके उत्तर के रूप में बहुत लंबे समय पर उत्तर दिया गया विस्तार रूप में, और वही सारी बातें बहुत सुंदरता से उठाकर रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत लिखा है। उसमें क्या है कि व्यावहारिक स्वरूप में भक्त को क्या करना चाहिए, क्योंकि सब लोग खाते हैं, सब लोग पीते हैं, सब लोग दोस्ती करते हैं, सब लोग गले लगाते हैं, सब लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं ना हम लोग, लेकिन वो भक्तिपूर्ण भावना में कैसे करनी चाहिए, उन्हीं चीज़ों को कृष्ण भावना भावित कैसे करना चाहिए, वो उपदेशामृत में दिया है, जिसका मूल इस स्कंद में है। ये हुई एक भूमिका। दूसरी भूमिका ये है इसकी कि हमारे उद्धव जी महाराज जो कृष्ण के परम प्रिय सखा हैं, बहुत प्रिय सखा है भगवान के, जो भगवान के भाई भी हैं, कजिन चचेरे भाई भी हैं, तो भगवान के जैसे ही दिखते हैं, उनका वर्ण भगवान जैसा ही है, उनका स्वरूप भगवान जैसा ही है, वो बृहस्पति के शिष्य हैं, वो भगवान के बहुत महत्वपूर्ण मंत्री भी है द्वारका के सभा में, क्या नहीं है उनके अंदर ऐसी योग्यता, सबसे भगवान के निकट हैं, उठना बैठना खाना पीना सोना हास परिहास करना शिकार खेलना मंत्रणा करना ऑफिशियल अनऑफिशियल अधिकृत अनधिकृत जो संबंध है सब प्रकार के संबंध में सबसे निकट है भगवान के, और प्रेम इतना है भगवान का, प्रेम प्रेम पूर्ण सखा भी है भगवान के। तो जब प्रेम होता है ना, इस बात को आप ध्यान से समझिए, जब आपका किसी के प्रति विशेष प्रेम होता है, होता है जीवन में हमारे सब लोगों के साथ सब इतना प्रेम नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ लोगों पर हमारा विशेष संबंध होता है प्रेम का, हृदय पूर्वक होता है, तो जब ऐसा संबंध होता है तो जिसके ऊपर हृदय पूर्वक प्रेम है उसके जीवन में जो भी होता है वो हमें ना अंदर अनुभूति होती है। उदाहरणार्थ अगर समझो आपकी प्रिय व्यक्ति समझो अभी कानपुर में है और आप पंढरपुर में हो, और वो उसको वहाँ पर बुखार आता है, बीमार पड़ जाता है, तो आपको यहाँ पर धक धक होती है, लगता है कुछ है, और आप फोन करेंगे, बेटा कैसे हो, मित्र कैसे हो, तो कहेंगे आज सुबह से बुखार में मैं बिस्तर में पड़ा हूँ, हाँ मुझे सुबह से लग ही रहा था कि ऐसे ऐसे। इसके बारे में हमने गुरुदेव से भी चर्चा की थी, तो उन्होंने कहा ये बात सही है, जब प्रेम होता है तो प्रेमी के विषय में जो कुछ बातें हैं वो हृदय में उसकी अनुभूति भी होती है। जैसे हमारे भक्तों के समुदाय में बहुत लोगों का देहांत भी हुआ है, लेकिन जब देहांत हो रहा है तो रात को सब सो रहे हैं, लेकिन जो प्रेमी व्यक्ति है ना वैसे अचानक उठ जाते हैं उस समय में, और भाग के जाके देखते तो मृत्यु हो रही है, गहरे नींद सोए व्यक्ति है अगले कमरे में और दूसरे कमरे में जो मरणासन्न व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो रही है, तो बीच रात में कभी ऐसी नींद खुलती नहीं है लेकिन उस समय खुल जाती है। ये हमने कई बार अनुभव किया है, ये सब प्रेम के कारण होता है। प्रेम का संबंध ऐसा है कि उसमें आंतरिक भावनाएं प्रकट होती है। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब श्री कृष्ण भगवान की अंत्य लीला अंतर्धान होने की लीला होने वाली थी तो उद्धव जी को यहाँ पर अनुभूति हुई कि लगता है जा रहे हैं। ये क्या देख के लगा उनको कि यादवों के द्वारा एक उनको यज्ञ करना था बहुत बड़ा, तो उन्होंने क्या किया, सारे यादवों को द्वारका से बाहर निकाला, समुद्र से बाहर निकालकर एक क्षेत्र है विवास प्रवास क्षेत्र, वहां पर लाया अपने सारे परिवार के जितने भी सदस्य थे, कितने थे, एक अक्षवेणी सैन्य था उनका पूरा यादवों का, वो तो पुरुष ही थे लेकिन उनकी माता पिता पत्नी प्रपोत्र कितनी पोतियां कितनी होंगी ना, वो सबको लेकर वो प्रवास क्षेत्र में आए और वहां पर उन्होंने पूजन कराया। तो ज्योति पंडित तो थे, ये भगवान के प्रेमी तो थे, उनको लगा अरे द्वारका में स्वयं भगवान कृष्ण का अस्तित्व है तो द्वारका के अलावा अन्य कोई और पवित्र स्थान कौन से हो सकता है जिसमें उनको ऐसी आवश्यकता पड़ी कि उनको वहां लेकर पूजन किया जाए, जब द्वारका में स्वयं वो स्वयं है, रुक्मिणी है, सारी परम लक्ष्मियां वहां पर विराजमान है पत्नी के रूप में, तो द्वारका में पूजन होना चाहिए। तब उनको ऐसा मन में अनुभूति हुई, हो सकता है कि ये द्वारका छोड़कर जाना चाहते हैं, हो सकता है इनको अंतर्दान होना है, इसलिए वो लोगों को द्वारका लुप्त होने के पहले उनको द्वारका के बाहर निकाल रहे हैं, तो जाके भगवान को एकांत में पूछते हैं। आपके जो कार्य देख रहा हूं मैं, उससे मुझे अनुभूति हो रही है कि आप जाने की तैयारी कर रहे हो। भगवान ने कहा हाँ सही है, अभी कुछ ही समय पर अंतर्धान होने वाला हूँ। तो व्याकुल हो गए वो बहुत। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके बिना रह नहीं सकता, आप चाहे मुझे चरणों का सेवक बनाकर कहीं भी किसी भी लोक में लेके जाइए, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता आपके बिना। तो उद्धव जी का जो आने वाले विरह के विषय में जो भाव था, उसको इंग्लिश में कहते हैं एंटीसिपेटरी सॉरो, मतलब अभी तक वो दुख घटना हुई नहीं है। जैसे किसी का विवाह होता है ना लड़की का, तो एंगेजमेंट होती है तब से मां रोना शुरू करती, अभी तो घर पे ही है लेकिन अभी जाएगी, वो अभी जाएगी तो कैसा होगा, तो वो सोचकर आज से ही रोने लगती है जब सामने बैठी है वो। उसी प्रकार से भगवान सामने हैं, अभी गए नहीं है लेकिन जाने वाले हैं, ये सोचकर वो इतने दुखी हो गए। तो फिर कृष्ण को भी उनकी चिंता हुई, उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा बोध देना चाहिए। तो कृष्ण ने दिया हुआ बोध है ये सांत्वना है, भगवान ने उद्धव को दी हुई सांत्वना। बहुत सुंदर विषय है ये, बहुत ही एक तरह से सिद्धांत तो है ही, जैसे अर्जुन को बताया वैसे उद्धव जी को बताया, और अर्जुन को बताया और उद्धव जी को बताया, उसमें अंतर क्या है? अर्जुन के पास बहुत कम समय था, युद्ध ऑलरेडी शुरू ही होने वाला था, बहुत ही कम समय में उनको सारे प्रश्नों का उत्तर देना था, तो संक्षिप्त रूप में उनको बताया। लेकिन उद्धव जी के सामने कोई युद्ध नहीं था, कोई ऐसा टारगेट नहीं था कि भाई इतने ही समय में उसको पूरा करना है, तो उद्धव जी को विस्तार रूप में बताया। सार रूप में उसका अर्थ है कि, लेकिन वो जिस रूप से बताया है बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने सारा सिद्धांत उद्धव जी को समझाया है। जरूर उसको पढ़ना चाहिए, उसको उद्धव गीता भी कहते हैं, सारे तत्व ज्ञान भी दिए हैं हर प्रकार के। तो भगवान ने उद्धव को लीला क्यों नहीं सुनाई, सिद्धांत क्यों सुनाया? क्योंकि सिद्धांत सुनने से दुखों का निवारण होता है। आप जब भी दुखी कष्टी होंगे ना, भगवत गीता खोल के बैठिए और पढ़िए उसको, तुरंत आपका मन शांत हो जाए। दुखों का सुखों का सामना करने के लिए हमें क्या मदद करती, क्या कौन सी वस्तु मदद करती है? अगर हमारा सैद्धांतिक ज्ञान परिपूर्ण है तो हम दुखों को झेल सकते हैं। इसलिए भाव एक वस्तु है और सिद्धांत दूसरी वस्तु है, और दोनों ये भक्ति के रेल की दो पटरियां हैं जिस पर रेल चलती है भक्ति की। तो भाव भी होना चाहिए, लेकिन केवल भाव होगा तो हम भावुक होकर ऐसे सहज भावना होती ना वैसे हो जाएंगे, और भाव नहीं होगा, भावना नहीं होगा, केवल सिद्धांत होगा तो हम रुक्ष हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। तो सैद्धांतिक वस्तु से फाउंडेशन हमारा नींव जो है वो मजबूत हो जाती है, उस नींव पर भाव का विकास होना चाहिए, तब हमारी भक्ति जो है वो स्वाभाविक प्राकृतिक हो जाती है, नेचुरल, उसमें कोई आर्टिफिशियल वस्तु नहीं होती। ये हुआ एक कारण उनको सिद्धांत बताने का, और दूसरा कारण है प्रेम, क्योंकि वो अपने भक्त को दुखी नहीं देखना चाहते थे। अच्छा, अगर वो उनके पास तो सिंपल उपाय था ना कि उद्धव जी को लेके जाए अपने साथ में, कि उसको वही चाहिए था, तो इतना बड़ा प्रवचन करने की जरूरत क्या है? ठीक है भैया चलो मेरे साथ, जहाँ पर मैं लीला करूँगा अगले ब्रह्मांड में वहाँ भी आ जाना आप, वहाँ पर साथ में रहेंगे फिर दोबारा लीला करेंगे। नहीं, भगवान ने उद्धव जी को कहा कि आप हमारे साथ नहीं आ सकते। जैसे वो था ना तोता, राधा रानी का तोता था शुक, लीला शुक, उसको भी राधा रानी के साथ और श्याम सुंदर के साथ अंतर्धान होने के समय जाना था, लेकिन राधा कृष्ण भगवान दोनों ने कहा कि आपको यहाँ रहना है और हमारे लीलाओं को गुणगान करना है, सेवा दिया उनको, और सेवा देते ही वो रुक गए। हम लोगों को ये पता होना चाहिए, भगवान का व्यक्तिगत सान्निध्य से भी भगवान की सेवा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान का संग, भगवान के साथ शरीर रूप में साथ रहने से भी करोड़ों गुना अधिक तीव्रता से और सूक्ष्मता से सेवा के माध्यम से होता है। सेवा ऐसी क्रिया है जो भगवान को हमारे साथ आध्यात्मिक रूप में बांध देती है। सेवा ऐसा एक वैक्सीन है, ऐसा लसीकरण है जो हमें भव रोग से दूर रखता है, क्योंकि भगवान का निकट आध्यात्मिक स्तर पर सान्निध्य प्राप्त होता है। एक ऑप्शन है भगवान के साथ रहें, दूसरा ऑप्शन है भगवान की सेवा करते रहें जहां पर भी हो। उद्धव जी के जीवन में कथा है ये। उद्धव जी इतने निकट थे भगवान के कि अन्य कोई बस व्यक्ति उद्धव जी के इतने निकट था ही नहीं। गोपियां भी सोचती थी अरे उद्धव जी आए हैं, कितने भाग्यवान जीव है ये, इतने भगवान के निकट है ये, और हम लोग इतनी दूर रहकर तड़प रहे हैं, ये कितना भाग्यवान है, उठता बैठता खाता पीता भगवान के साथ है। तो गोपियां भी उनके लिए गौरव कर रही है उनका। और उद्धव जी जब आते हैं तो क्या देखते हैं, मैं तो शरीर से भगवान के इतने निकट हूं, लेकिन ये गोपियां इतनी दूर रहकर भी भगवान के आत्मा के साथ मिली हुई है, एक रूप है, जितना सान्निध्य जितना निकटता मुझे भी प्राप्त नहीं है, समय एकदम निकट होने पर भी मुझे प्राप्त नहीं है। भाव का ये महिमा है, भाव जब होता है तो शरीर से साथ होने की जरूरत नहीं होती। सान्निध्य तो केवल शरीर का नहीं होता है, वाणी का भी सान्निध्य होता है, चेतना का भी सान्निध्य होता है। तो इसलिए वो लीला शुक ने तुरंत भगवान की जो इच्छा थी राजा रानी की या भगवान की कि आप रहो और हमारा गुणगान करो, तुरंत स्वीकार कर लिया। कारण था कि जब वो भगवान का गुणगान करेंगे वो भगवान का सान्निध्य अति उत्कट रूप से अनुभव करेंगे, इसलिए वो रहे पीछे। तो उद्धव जी को भगवान को रोकना था पीछे, उसका क्या कारण था, उसका कारण ये था कि भगवान की जो पत्नियां थी उनका भी उनको उद्धार करना था। भगवान ने क्या किया, प्रभास क्षेत्र में आके पहले यादवों का उद्धार किया, यादवों को वापस भेज दिया, फिर बलराम जी चले गए, फिर स्वयं भी चले गए भगवान, अब बची उनकी पत्नियां। तो उन्होंने उद्धव जी को कहा था कि मेरा पत्नियों का उद्धार आपको करना है। और परीक्षित महाराज उस समय चक्रवर्ती सम्राट बने हुए थे, बनने वाले थे आगे जाकर, उनको भी सूचना दी थी उन्होंने। उनके प्रपौत्र थे वज्रनाभ, अनिरुद्ध के पुत्र थे भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ, जो ब्रज के राजा बने थे, पूरे सृष्टि में ब्रज का राजा वज्रनाभ को बनाया गया था। उन दोनों को उन्होंने बताया था कि मेरे जाने के पश्चात मेरी पत्नियां बड़ी दुखी होंगी और वो यहाँ पर आएंगी ब्रज में, आप उनको लेकर जाना ब्रज में। तो ब्रज में आई थी और जमुना जी को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गई थी, क्योंकि जमुना जी भी उनकी पत्नी है, लेकिन जमुना जी तो उछल रही है, लगता है मानो आनंद से उछल रही, उनकी लहरें और उनकी जल प्रवाह। तो सारी रोती हुई रुदन रुदन करती हुई भगवान की पत्नियां कहती हैं अरे आप तो हमारी सौतन हो और हम सब दुखी हैं, तो आप सब आप ऐसे कैसे आनंद में हो। तो कहते हम ब्रजवासी पत्नी हैं भगवान की, हम राधा रानी के अंश हैं और हमें राधा रानी का अंश होने के नाते कोई दुख नहीं है, हम सदैव भगवान के साथ हैं। तो रानियों को समझ में नहीं आया क्योंकि हमारे भगवान तो चले गए, हमें दुख हो रहा है, तो कैसे इस बात को समझे। तो जमुना जी कहते हैं आप कुसुम सरोवर चले जाओ, वहाँ पर आपको उद्धव जी मिलेंगे, वो आपको सब रहस्य समझाएंगे। तो ये राजा दोनों उनको कुसुम सरोवर लेके आए हैं और फिर उद्धव जी वहाँ पर उस समय गोपियों को मिलकर गोपियों के साथ 6 महीना संग करके एक बड़ी आध्यात्मिक विकास की स्थितियों को प्राप्त करके, हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, उनके ना आत्मा आध्यात्मिक भावना में काफ़ी प्रगति हुई। 6 महीने में हर दिन उनकी प्रगति 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 होती रही, चरम सीमा पर पहुँच गई। वो चरम सीमा क्या थी उसकी, कि मुझे लगता था मैं सबसे भगवान के निकट हूँ और ये गोपियाँ तो मुझसे करोड़ों गुना अधिक निकट हैं। मुझे लग रहा है कि मैं निकट हूँ लेकिन मेरे सामने ये तो ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके साथ, निकटता मेरी। फिर आगे प्रगति चेतना की ऐसी हुई कि मुझे अभी इन गोपियों के चरणों के रज चाहिए, बिना इनके चरणों के रज प्राप्त किए मैं इनकी निकटता को समझ नहीं सकता ना प्राप्त कर सकता हूँ। और अगर और प्रगति हुई कि अगर मैं इनको सामने से कहूँगा आपके चरणों के रज दो तो उनको कितना संकोच होगा, क्योंकि वो तो सीधी सादी गोपियाँ हैं और उनके दृष्टि में मैं मंत्री हूँ, बड़ा अधिकारी हूँ, कृष्ण का मंत्रणा करने वाला दरबार का व्यक्ति हूँ, ऑफिशियल व्यक्ति हूँ, रथ में बैठकर मुकुट पहन के आया हूँ, तो वो उनको संकोच होगा, नहीं नहीं कहेंगी। तो मुझे उनको बिना संकोच जब रज मिलती है तब उसकी कृपा होती है। ऐसे भक्तों को पकड़ के उनके दो हाथ बांध के और चरण कमल पकड़ के सर पे लगाने से कृपा प्राप्त नहीं होती है। एक जमाना था हमारे इस्कॉन में, वैसे हम लोग करते थे उसको, लेकिन बंद किया गया उसको। और भक्तों को इच्छा नहीं है, उसको पकड़ के उठा के 10 लोग उठा के उसके हाथ पांव पकड़ के उसके पैर सबको सर पे लगा देते, लेकिन वो सब बंद हो गया क्योंकि उसके अंदर जो वास्तविक भाव है वो नहीं है। रज की प्राप्ति यहाँ पर, यहाँ तक कि सच्ची माता को जब भी अद्वैत आचार्य से क्षमा मांगनी थी, उनके चरणों की रज देनी थी, तो सच्ची माता को थोड़ी अद्वैत आचार्य चरणों की रज देंगे, वो तो जगन माता है। और महाप्रभु जी ने कहा था जब तक आप अद्वैत आचार्य की क्षमा नहीं प्राप्त करोगे और उनके चरणों की रज नहीं लोगे, मैं आप पर कृपा नहीं करूँगा। और सारे भक्तगण कह रहे भगवान मैया को कृपा नहीं दी आपने, कृष्ण प्रेम का वर्षाव नहीं किया, नहीं दूंगा मैं, अद्वैत आचार्य का अपराधी है वो। तो प्रतीक्षा करती रही वो बहुत समय तक, और एक समय भाव विभोर होकर अद्वैत आचार्य जब बेहोश होकर गिर पड़े, जाकर तुरंत उनके चरणों की रज ली, तब जाकर चैतन्य महाप्रभु ने उनका कृपा की। तो चरणों की रज लेना होगा ना भक्तों के, उसका भी एक तरीका होता है जो सहजता से प्राप्त होना चाहिए। जब भक्त चल के जा रहे हैं तो उनके पीछे आप ले सकते हो, जा के उनके चरणों के नीचे हाथ डाल के नहीं ले सकते, हो सकता है वो गिर जाएं और उनको जख्म हो जाए। कृपा कैसे लेनी चाहिए, सहजता से लेनी चाहिए, सहजता से कृपा प्राप्त होनी चाहिए। और शास्त्र में हमारे लिखा है कि 3 वस्तु महाबल है, एक भक्त भुक्त अवशेष यानी भक्तों का महाप्रसाद, एक भक्त चरण रज और एक भक्त चरण का जल, 3 महाबल। और उसको ऐसा भी लिखा है हमारे शास्त्र में कि किसी भी कीमत पर उसको प्राप्त करना चाहिए, लेकिन किसी भी कीमत का अर्थ ये नहीं कि उनको जख्मी करके, दुखी करके, अपघात करके नहीं प्राप्त करना चाहिए। किसी भी कीमत पर मतलब हमारे तरफ से ऐसा प्रयास होना चाहिए कि वो सहजता से प्राप्त हो, और उसके लिए प्रतीक्षा भी करना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्योंकि संतों की चरणों के रज में पूरे भक्ति का परम रहस्य छुपा हुआ है, श्री कृष्ण प्रेम का रहस्य छुपा हुआ है, और गोपियों की चरण रज की क्या महिमा, क्योंकि गोपियों की चरण रज तो कृष्ण भी चाटते हैं, बछड़े बछिया बनकर ब्रह्म सम्मोहन लीला में एक एक कर्ण चाटा है भगवान ने पूरे ब्रज का। एक बार तो ब्रह्मांड लीला में एक थोड़ा जगह खाया था, एक ही जगह का एक ही बार खाया था, लेकिन बछड़े बनकर एक साल भर कितने करोड़ों बछड़े बछिया बने वो, और पूरे ब्रज में जहां जहां घूमे घास के बहाने हर जगह का कर्ण उन्होंने चाटा है, खाया है उसको। इतने भगवान को ब्रजरज क्यों प्रिय है, क्योंकि वहां पर गोपियां ग्वाल बाल गैया सब विहार करते रहते। तो भगवान जिस रज के लालायित हैं वही रज है गोपियों के चरणों की। क्यों चाहते हैं वो, क्योंकि प्रेम का रहस्य उसमें छुपा हुआ है। ऐसे गोपियों की चरणों की जो ब्रज रज है, कहते अगर आपको सारे वैकुंठों का वैभव प्राप्त हो गया, सोचने में क्या प्रॉब्लम है, सोच सकते हैं ना, नो प्रॉब्लम, विचार करने में क्या प्रॉब्लम। सारे वैकुंठों का ऐश्वर्य, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानव, जहां जहां एक एक वैकुंठ में अनंत कोटि लक्ष्मियां भगवान की सेवा कर रही हैं, और उसमें से एक लक्ष्मी की टूटे हुए कंगन जो फेंक दिया था ऐसे लुटुपुटी की लड़ाई में, उस पर पूरे ब्रह्मांड का इकोनॉमिक्स चल रहा है। कुछ समझ में आया आपको? लक्ष्मी और विष्णु भी पति पत्नी है ना, उनके अंदर भी प्रेम होता है बहुत, कभी भी झगड़े भी होते हैं। तो एक बार ऐसे ऐसे प्रेम की लड़ाई में उनका एक कंगन टूट गया, तो लक्ष्मी जी ने ऐसे ही मान करके उसको उठा के फेंक दिया उसको, होता है ना कभी कभी। तो वो जो टूटा हुआ कंगन फेंका हुआ है उसके अंदर ये भौतिक ब्रह्मांड का पूरा इकोनॉमिक्स चल रहा है, देखो आप। और ऐसा एक ही कंगन उनके हाथ में नहीं, जो एक ही टूटा और एक को फेंक दिया, बहुत सारे कंगन हैं, दूसरे हाथ में भी है, हाथ में अंगूठियां भी है, कलाई बंद भी है, बाजू बंद भी है, बहुत सारे हार भी है, कमर काचनी भी है, सर पे भी बहुत सारी चीजें लगी हुई है, हाँ वो बिंदी भी लगी हुई है, कितने सारे अलंकार लगे हुए हैं, वो एक लक्ष्मी के अंदर है। ऐसी लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम, ऐसी कोटि लक्ष्मियां, ऐसी लक्ष्मियां एक वैकुंठ में भगवान की सेवा कर रही है, और ऐसे अनंत कोटि वैकुंठ है, एक वैकुंठ नहीं है, ब्रह्म ज्योति में अनंत वैकुंठ है। उस सारे वैकुंठ का ऐश्वर्य अगर आपको प्राप्त हो तो भी उन सारे वैकुंठ के सारे ऐश्वर्य और धन से आप ब्रज की रज की एक कण को नहीं खरीद सकते। ये बात हमको पक्का पता होना चाहिए, क्योंकि उस रज के कण में जीवन का परमोच्च लक्ष्य जो है प्रेम, उसका रहस्य छुपा हुआ है, सर्वोच्च प्रेम का रहस्य उसमें छुपा हुआ है। और उद्धव जी की आत्मा की जो उत्क्रांति हुई है वो ये चरम सीमा है कि इन गोपियों की चरण रज मुझे चाहिए। अभी देखिए, कोई भी विश्व में ना तपस्या क्यों करता है? हम इधर हैं, तुमको इधर जाना है, है ना? नॉर्मल अभी ट्वेल्थ में कोई टीवी नहीं देखता है, कोई व्हाट्सएप नहीं देखता है, यूट्यूब कोई ऐसा होता नहीं, लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको। मेरे ट्वेल्थ में मैंने टीवी देखना छोड़ दिया था, मुझे अभी याद है। उस समय टीवी था, टीवी दो तीन चैनल थे खाली बस, लेकिन वो भी हमको उसका भी व्यसन था। हमने ट्वेल्थ में ऐसा प्रण लिया कि हम टीवी नहीं देखेंगे, तो पूरा साल टीवी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि कुछ त्याग करके, कुछ तप करके हम चाहते थे कि हम ट्वेल्थ में अच्छे मार्क लेके डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईटी कुछ बने। तो आम साधारण तरीके पर जब कोई तप करता है, कोई त्याग करता है, तो एक स्थिति से हमको उच्च स्थिति को प्राप्त होने के लिए हम लोग तप करते हैं। कोई भी उच्च स्थिति से नीचे आने के लिए तप नहीं करता है। कोई करता है क्या? आप में से कोई किया है? तब मैं MBBS हूँ, अभी मुझे तप तप करके ट्वेल्थ पास होना है, अभी MBBS को त्याग देना है। तो मैं प्रधानमंत्री हूँ तो अभी मुझे तप करके एक साधारण मतदार बनना है, ऐसा कोई होता नहीं। आगे जाने के लिए तप करते हैं। लेकिन उद्धव जी एक तरह से एक सर्वोच्च पद में थे, और कोई उनके लिए भगवान के विषय में प्रगति का विषय नहीं था। आप सोचो उसके बारे में, उद्धव जी और क्या बन सकते थे? इतने सखा है, इतने मित्र है, उठते बैठते खाना पीना, कभी मुंह से निकाल के खाना, ये सब कुछ उनके लिए मुमकिन था। तो वो कैसे सोचेंगे कि उसके आगे भी कोई स्थिति है? भगवान ने उनको दिखाई वो स्थिति, ये स्थिति है उसके आगे। तो अपना तथाकथित उच्च पद त्याग करके इस सृष्टि में उद्धव जी तृण का पत्ता बनने के लिए तपस्या करने के लिए बैठे। सोचो आप, और तृण का पत्ता कैसे होता है? वैसे भी वृक्ष योनि जो होती है ना, वो उसको सबसे निचला माना गया है। चेतना के विषय में वृक्ष योनि जो है वो सबसे न्यून है। उसी शाखा काटो, फूल काटो, कुछ काट के फेंक दो, वृक्ष कभी कुछ बोल सकता नहीं उसके लिए। चेतना ही इतनी उनकी न्यून है। वो जो इंद्र और विश्वरूप ब्राह्मण का जो लीला हुआ था ना, उस पाप के बाद में ये सब लीला हुई है। उसमें वृक्ष को इंद्र ने ऐसा वरदान दिया था कि आपकी कोई भी शाखा काटेगा तो आपको दर्द नहीं होगा, यानी चेतना इतनी न्यूनतम कर दी उसकी। वो वृक्ष योनि में तृण का पत्ता और भी नीचे है सबसे। बरगद का पेड़ तो बड़ा होता है, कभी एक अपना पोजिशन होता है, पीपल का पेड़ का पोजिशन होता है, क्या नाम औदुम्बर का एक पोजिशन होता है विशालता में, लेकिन तृण का पत्ते का पोजिशन क्या होता है? कुछ नहीं होता है, कुचल दो कभी भी कुछ नहीं होता है, चलो उसके ऊपर फिर खड़ा हो जाएगा, बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके लिए। तो इतना न्यून जीव बनने के लिए उन्होंने किया। क्यों किया? क्योंकि 6 महीने जब गोपियों का संग उसे प्राप्त हुआ, तब उसने देखा कि इन्हें तृण के पत्ते पर चलने में कोई आपत्ति नहीं है, आराम से चलती है। मैं मांगूंगा तो मुझे तृण का चरणों की रज देने में संकोच करेंगे, लेकिन तृण के पत्तों को इनके चरणों की रज बड़ी सहजता से प्राप्त होती है, इसलिए मैं तृण का पत्ता बनूंगा और सहजता से वो अपनी इच्छा से जब मेरे ऊपर चलेंगे तो इनकी चरणों की रज मुझे प्राप्त होगी, तब मुझे अपने जीवन की परमोच्च प्राप्ति होगी। देखो क्या भावना है, हमें ना इस भावना को ग्रहण करना चाहिए। भक्ति मार्ग में कितना ज्ञान आपको है, कितने श्लोक याद है, अच्छा है, कोई खराब नहीं उसके अंदर। फिल्मी गाने याद करने के बदले में याद करना अच्छा है, लेकिन ये सब याद करने से ही कोई परिपूर्ण प्राप्ति हुई इसका कोई भरोसा नहीं है। ये जब जीवन में उतारेंगे, उसके अनुभूतियां प्राप्त होंगी, उसको हम अपनाएंगे जीवन में, तो वो महानता है। अभी उद्धव जी को ये अनुभूति प्राप्त हुई कि इनके चरणों की रज मुझे प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन मैं तृण का पत्ता वत्ता नहीं बन सकता, बहुत मुश्किल बात है, मैं तो कृष्ण का सखा हूँ, मैं भी क्यों तृण का पत्ता बनूँ? छोड़ो फिर जाने दो, कोई बात नहीं, हमारे लिए मुमकिन नहीं, चलो आई विल गो बैक। जो अनुभूति प्राप्त हुई सार के रूप में चेतना के स्तर पे, उसको उन्होंने अपनाया, उस पर अमल किया, कृष्ण को मिले, उनको रिपोर्ट दिया, और फिर लौट के आए। वो कृष्ण भी अचंभित रहे, अरे कहाँ जा रहे हो? तो उनको कहा कि मैं दोबारा ब्रज में जा रहा हूँ। क्यों? मैं तप करने जा रहा हूँ। क्यों? ये तृण का पत्ता बनना है. क्यों? क्योंकि गोपियों की रज की प्राप्ति करनी है. तब भगवान समझ गए कि अभी ये ग्रेजुएट हो गया, गोपियों की पाठशाला में इसको डिग्री मिल गई. ये द्वारका की पाठशाला में ये स्नातक थे, ग्रेजुएट थे, तो उनको उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए गोपियों की पाठशाला में भेज दिया. इसको ज़रूरत है अभी, उसको लग रहा है कि यही चरम सीमा है, उसको पता नहीं इसके आगे भी कुछ होता है. तो उसका पूरा परिचय कराया, पूरे जितना भी ज्ञान था उसको बृहस्पति के द्वारा प्राप्त हुआ सारा उन्होंने नलीफाई कर दिया पूरा. यहाँ तक कि बृहस्पति के ज्ञान को प्राप्त करने वाले शिष्य उद्धव जी को भी स्वयं ये अनुभूति हुई कि ये ज्ञान बिल्कुल बेकार है. इन गोपियों के अनुभूतियों के सामने, इन गोपियों की चेतना के सामने, इन गोपियों के जीवन के सामने, इनके गोपियों के भगवान के प्रेम के सामने ये सारा ज्ञान तुच्छ है. तो छोड़ने में कष्ट नहीं हुआ. छोड़ने में कष्ट कभी होता है? जब हमारे सामने, हमारे पास जो है उससे अधिक उच्च वस्तु नहीं रहेगी तो छोड़ने में कष्ट होता है. केवल बोलेंगे आपको ये छोड़ो वो छोड़ो ये छोड़ो वो छोड़ो तो आपको बड़ा कष्ट होगा. लेकिन आपको कोई ऐसी उच्च वस्तु दिखाएंगे ये लो तो आपको वो छोड़ो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही छूट जाता है. बालक कैसे होता है, तो गंदा खिलौना खाते रहता है मुँह में और दस्त होते रहते हैं, आप बोलेंगे ये निकालो उसके हाथ से, निकालो हाथ से, तो भौं करके रोता है. लेकिन उससे बढ़िया चमकता हुआ खिलौना सामने रखेंगे तो अपने आप ही उसको फेंक देगा और उसको पकड़ेगा जाकर. ये हमारा स्वभाव है. किसी भी उच्च वस्तु को देखकर आप निचली वस्तु को तुरंत त्याग कर सकते हैं. तो विरक्ति, विरक्ति क्या होती है? नेति नेति विरक्ति नहीं होती है. ये छोड़ो वो छोड़ो ये छोड़ो तो लोग बोलेंगे करें क्या फिर. प्रभुपाद को भी लोगों ने पूछा था ना कि नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग. लोग बोलते भी करें क्या, करना क्या है जीवन में, यही तो करते हैं, उसके अलावा क्या करना है. तो प्रभुपाद ने कहा चैंट हरे कृष्णा, भगवान की सेवा करो. तो जब ये उच्च क्रिया प्राप्त हुई तो उनको कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ अरे मैंने मांस छोड़ दिया, कितना बड़ा त्याग किया. बार बार उस मांस की याद आती है मुझे, मेरे दिमाग में वो मछली घूमती रहती है. ऐसा नहीं होता है ना. हमको भी कभी लगा ना ऐसे, क्योंकि जब उच्च वस्तु प्राप्त होती है तभी फिर वो जो छोड़ दी है वो पता चलता है कि ये तो घटिया चीज थी, हम छोड़ दिया. इसलिए हमारी जो भक्ति में जो वैराग्य है ना वो ऐसे ही सहज होना चाहिए, उच्च वस्तु को प्राप्त करके. मायावादी संन्यास में कैसा होता है, केवल नेति नेति नेति, ये छोड़ो वो छोड़ो, ये भी माया ये वो माया, ये भी माया ये भी माया, सब छोड़ दो. फिर करे क्या, जब तक कोई अमृतमयी स्वादिष्ट वस्तु प्राप्त नहीं होती तब तक वो त्याग कैसे हो सकता है. उसी की याद आती रहेगी ना हमको बस. लेकिन जब उच्च वस्तु प्राप्त होगी तो उसकी याद भी नहीं आएगी आपको, उसमें आप इतना आनंद मिलेंगे उसको. तब ऐसे श्री कृष्ण को उद्धव ने बताया कि मैं जा रहा हूँ और अब मैं तप करने वाला हूँ और ये तप के माध्यम से मैं गुलमलता तृण का पत्ता बनने वाला हूँ, उसके बाद मैं गोपियों की रज प्राप्त करने वाला हूँ. तो दोबारा ब्रज में आकर जो कृष्ण के इतने निकट थे, वो निकटता जो गोपियों को चाहिए थी, वो निकटता के लिए वो उद्धव को सराहते थे, वो निकटता त्याग करके वो दूर चले गए उनसे शरीर से और दूर बैठकर उन्होंने उन रज की प्राप्ति की. पहले तृण का पत्ता बने उसी जन्म में और गोपियों के रज की प्राप्ति की और फिर दोबारा अभी नहीं कहा कि हाँ रज की प्राप्ति वापस चलो द्वारका जाएंगे भगवान के साथ रहेंगे, ये भी प्राप्त हो वो भी रहेंगे. आज भी वो वहां पर निवास कर रहे हैं कुसुम सरोवर के किनारे तृण का पत्ता के रूप में. क्योंकि जो एक बार उच्च वस्तु प्राप्त होती है तो उसके बाद कितनी भी अच्छी वस्तु हो उसके नीचे वाले वस्तु के बाद नहीं जाएंगे हम लोग. जैसे प्रधानमंत्री कोई बन गया तो अगली बार वो अर्थमंत्री नहीं बनेगा, बोला ठीक है मैं घर पे रहूंगा रिटायर होके. लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद अर्थमंत्री बनना, इतना नम्रता किसी के पास होती नहीं है. है ना. या अभी आप अगर HOD बने हुए हो तो बाद में बोला कि आपको एक ऑर्डिनरी डॉक्टर बनकर काम करना है तो आप बोलेंगे मैं रिटायर हो जाती हूँ अभी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि एक बार उच्च पद में जाने के बाद में यू कैन नॉट गो बैक. ऐसा है भक्ति का जीवन. और भक्ति के जीवन में उच्च वस्तु सदैव ऐसी होती है जो बाह्य दृष्टि से वह तुच्छ होती है. बाह्य दृष्टि से उद्धव का जो स्थिति थी भगवान के साथ में वो उच्च थी एक्सटर्नली. तृण का पत्ता बनना मतलब अरे ये तो कुछ भी नहीं, मिस्टर नोबडी बन रहा है ये. लेकिन वो आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वोच्च अवस्था है. स्पिरिचुअल लाइफ में हर वस्तु भौतिक लाइफ में जैसी होती है वैसे पूरी विरुद्ध विपरीत होती है उसकी, पूरा विपरीत योग है ये भौतिक दुनिया में। भौतिक दुनिया में अगर आप जितना आपका सम्मान बढ़ेगा, जितना आपका सम्मान बढ़ेगा, जितना आपकी कीर्ति बढ़ेगी उतना आपको बड़ा माना जाएगा, श्रेष्ठ माना जाएगा। और भक्ति के जीवन में जितना आप नम्र बनेंगे, जितना नम्र बनेंगे, जितना नम्र बनेंगे, तृणादपि सुनिचेन बनेंगे, उतना आपका गौरव बढ़ेगा। एग्जैक्टली उल्टा है। तो ये कश्मकश है हमारे जीवन में, संघर्ष चलते रहता है, क्योंकि भौतिक दुनिया में भी है और स्पिरिचुअल लाइफ भी अपना रहे तो क्या करूं, मान सम्मान को ले लूं कि मान सम्मान को ठुकरा दूं, यही संघर्ष में जीवन चलता है हमारा। लेकिन जब आध्यात्मिक अधिष्ठान स्ट्रांग होता है तो फिर वो व्यक्ति ना बड़े से बड़ा बनने के बाद भी बड़े से बड़ा नम्र रहता है। हमारे अंदर ऐसे उदाहरण है भक्तों के, जो समाज में बिजनेस वर्ल्ड में बहुत बड़े व्यक्ति हैं लेकिन भक्तों के बीच में ऐसे व्यवहार करते हैं कि आपको लगेगा अरे तो लाइन में खड़े प्रसाद के लिए, और ये प्रसाद में लाइन में खड़े होते तो उनको मीठा भी नहीं मिलता है तो वे चुपचाप चुपचाप रहते हैं। बहुत बड़े डोनर हैं मंदिर के, बहुत बड़ा उन्होंने मंदिर में इतना सहयोग दिया है लेकिन संडे फिस्ट में हमेशा लाइन में खड़े रहते हैं, कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं। तो ये सब देखा हुआ है हमने। देखो युधिष्ठिर महाराज को देखो आप, युधिष्ठिर महाराज जब युवराज थे, अभी राजा नहीं बने लेकिन महाभारत का क्या कहते हैं उसको, हस्तिनापुर में है और रोज पंगत उठा रहे, उनके पास करोड़ों साधु लोग आके भोजन करते थे। फिर उनको वनवास प्राप्त हुआ तो कोई कष्ट नहीं हुआ उनको, अरे अभी चप्पल के बिना घूमना पड़ेगा, तो पर्णकुटी में रहना पड़ेगा, पत्थर पे सोना पड़ेगा, राक्षसों के बीच में रहना पड़ेगा, कंदमूल खाने पड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे उनकी परवरिश थी आध्यात्मिक, वो कोई समस्या नहीं हुई। कोई को लोग तो ना डिप्रेशन से ही मर जाते हैं कि मैं कैसे रह पाऊंगा, ऐसा रहा हूं मैं अभी, ये उसी से मर जाते हैं, उसमें आत्महत्या भी कर लेते हैं। उनको सत्य को स्वीकार करने की शक्ति नहीं होती है। सत्य को स्वीकार करने के लिए नम्रता की आवश्यकता होती है। यू हैव टू बी हम्बल टू एक्सेप्ट द रियलिटी एज इट इज एंड लिव हैप्पीली इन दैट रियलिटी। उस सत्य स्थिति में जीने के लिए हिम्मत चाहिए तो नम्रता होनी चाहिए। गर्व के साथ आप संघर्षमय स्थिति में आनंद में नहीं जी सकते। अगर हम घमंडी है, गर्विष्ठ है तो संकट आने पर हम टूट जाते हैं, साइकेट्री के पास जाते हैं। लेकिन भक्ति में हमको ऐसे ट्रेनिंग मिलती है कि जीवन में कुछ भी हो सकता है, राजा का रंक हो सकता है एक दिन के अंदर, क्या करेंगे आप। काल का प्रभाव ऐसा है, काल के प्रभाव से कोई मुक्त नहीं है। लेकिन भक्ति में ये ट्रेनिंग मिलती है। धीरे धीरे क्यों ना हो, एक दिन में तृण का पत्ता नहीं बनेंगे हम, लेकिन धीरे धीरे क्यों ना हो उसकी ओर हम प्रगति करते हैं और लोगों को देखकर प्रेरणा प्राप्त करते हैं। अगर वो कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, गर्व से नहीं, नम्रता से। आशा हौसला उत्पन्न होता है। तो उद्धव जी को हम क्यों सराहते हैं, क्योंकि उद्धव जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उच्च पद से छोड़कर तृण का पत्ता बनने के लिए तपस्या किया है। और एक ही व्यक्ति उनके सामने है, वो ब्रह्मा जी हैं जो पत्थर बने हुए हैं बरसाने में, तपस्या करके 120,000 साल तप करने के बाद में उन्होंने भगवान को, भगवान ने बोला क्या चाहिए आपको, तो भगवान ने बोला, उन्होंने कहा कि आपके चरणों के रज चाहिए मुझे, तो जाओ बरसाने में पत्थर बनो। तो इतने बड़े ब्रह्मांड के प्रथम नागरिक है, वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द ब्रह्मांड। उनके ऊपर कोई है नहीं, इनके डायरेक्ट भगवान है और डायरेक्ट भगवान के अयोनुज पुत्र है वो, माता भी नहीं उनकी, सीधे भगवान से जन्म हुआ है उनका, सब कुछ उसके बाद भगवान ही है उनके पीछे। तो ऐसे ब्रह्मा जी तो कितना घमंड होना चाहिए उसको। मैं हमेशा ये कहता हूँ प्रवचन में, अगर ब्रह्मा जी अपना फैमिली फोटो निकालने के लिए बैठेंगे, सोचो आप, ब्रह्मा जी को अपने परिवार का एक साथ फोटो निकालना है तो कौन सा कैमरा लगेगा और कौन से लोग से फोटो निकालना पड़ेगा, कितना पीछे जाएगा आदमी वो, क्योंकि सभी जितने भी जीव है वो सब उसका परिवार है। हमें तो हम 101 साल के हो गए, हमारे पास 3 पीढ़ी हो गई, तुम कितना गर्व कर, देखो ये मेरे परिवार इक्यावन लोग हैं इसके अंदर, इतना गर्व करते हैं, उसका फोटो बना बार बार लगाते हैं, देखो मेरा ही परिवार है, मेरा परिवार है, मैं बीच में बैठा हूँ। इतने बड़े ब्रह्मा जी एक झटके में पत्थर बन गए। और पत्थर बनने का मतलब क्या होता है पता है आपको, बिकमिंग मिस्टर नोबडी, कोई भी चल सकता है, टट्टी पेशाब कर सकता है, कुत्ता बिल्ली गधा इंसान पापी पुण्यवान हर आदमी चल सकता है उसके ऊपर, है कि नहीं? ब्रह्मा जी के पर्वत पर टॉयलेट भी है ना, उधर जयपुर मंदिर के पास कुचल बिहारी के पास बड़ा टॉयलेट है, गंदा एकदम, ऊपर से हम लोग तो उसमें जाते हैं, बंदर लोग तो सब जगह ब्रह्मा जी के सर पे करते रहते हैं, है कि नहीं? ब्रह्मा जी को पता नहीं क्या? ब्रह्मा जी को पता है, बट उनको ये भी पता है कि नित्य यहाँ पर कृष्ण राधा रानी और गोपियाँ विहार करती है, उनके चरणों की रज प्राप्त होती है, तो दोलायमान रहते हैं, वैसे पिघलते रहते हैं कॉन्स्टेंट, तो उनको परवाह नहीं है उस विष्ठा और मूत्र की जो उन पर गिर रहा है। कितनी नम्रता है देखो आप, यही नम्रता ना उद्धव जी के व्यक्तित्व का मूल है, जो उद्धव जी होने पर भी उनको कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं क्यों बनूं, तो उनका पता वहीं रहे, कृष्ण को छोड़कर वहां रहे, जो कृष्ण के बिना रह नहीं सकते थे, जो कृष्ण को याचना कर रहे हैं मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, कुछ भी मैं रखो मुझे नौकर बना के रखो लेकिन आपके साथ रहूंगा, वो उद्धव जी छोड़ के कृष्ण को रह गए वहां पर। कारण क्या? उसका आध्यात्मिक गहरी अनुभूति, आध्यात्मिक गहरी अनुभूति से ही सब कुछ होता है, जो बाहर से कष्टमय लगता है लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति का बल ऐसे होता है कि वो सहज हो जाता है। तो जो नम्र भक्त होते ना उनके लिए ये सहजता है, लाइन में लगना, कंप्लेन नहीं करना, बहुत सारा बड़ा पोजीशन होने पर भी भक्तों के सामने ऐसा रहना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऑफिस में जाएंगे तो बहुत अधिकार में रहते हैं, इतना काम करते हैं, इतना कठोरता से, भक्तों के बीच में आएंगे तो ऐसा रहते हैं कि भाई यह कश्चित मिस्टर नोबडी। यही भगवान को बड़ा भाता है कि बाहर के विश्व में कितना भी बड़ा व्यक्ति ऐश्वर्य संपन्न कीर्ति संपन्न होगा, सौंदर्य संपन्न धन संपन्न होगा, लेकिन भक्तों के मेरे भक्तों के बीच में आने पर वो यकश्चित बन जाता है, भगवान को बड़ा भाता है, कोई भगवान को आकर्षित कर लेता है। ये पूरा स्कंद जो है ये भी उद्धव जी के नम्रता से आकर्षित होकर भगवान ने कही हुई बातें, प्रेम की बातें ये सब, दो उपदेश की बातें कौन करता है? जिस पर हमारा प्रेम होता है वही अपने प्रेमी व्यक्ति पर करता है। आप सबको जाके एडवाइस करते हो क्या? हम काउंसलर होने पर भी जिस पर बहुत ज़्यादा प्रेम होता है और वो भी प्रेम करते हैं उनको जाके हम सलाह देते हैं, नहीं तो हमारी सलाह भी वेस्ट है, इनको ज़रूरत नहीं उसको जाके सलाह देंगे तो वेस्ट है, वो उसका परिणाम नहीं मिलेगा आपको। आपको लग रहा है कि इसको सलाह देनी चाहिए और आप जाके देते हो और उसको उसकी ज़रूरत नहीं अनुभूति हो रही है उसको, और ज़रूरत के बिना सलाह देंगे तो सलाह भी वेस्ट है। इसलिए काउंसलिंग में सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या होता है? काउंसलिंग को उपदेश की ज़रूरत महसूस होनी चाहिए तब उसको दे दो। जैसे भोजन किसको देना है, भरे पेट भोजन दे सकते हैं किसको आप? तो वह पड़ा रहेगा उधर ही, वो है ना, भरे पेट आदमी को अगर आप बोलेंगे हमारे पास 56 भोग प्रसाद है तो बोलेंगे प्रभु जी शाम को दे दो, अभी नहीं खा सकते पेट भरा हुआ है अभी, भले दाल रोटी से भरा हुआ लेकिन भरा हुआ है, क्या करें? जब वो पेट खाली होगा और जब भूख लगेगी आपको तो सूखी रोटी भी आप बोलेंगे ना ये 15 दिन पहले का महाप्रसाद है तो भी आप बड़े प्रेम से खाएंगे उसको। तो आवश्यकता जरूरत ये हर वस्तु की कीमत हमको बता देती है। जैसे भूख हमें भोजन का स्वाद का क्या अर्थ है ये आपको अनुभूति देती है, उसी तरह से आवश्यकता होनी चाहिए, मुमुक्षु कहते हैं उसको, जरूरत होने पर ही आध्यात्मिक जिज्ञासा होने पर ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की शक्यता निर्माण होती है। अगर आपको आध्यात्मिक जिज्ञासा नहीं है तो आध्यात्मिक ज्ञान कितना भी आपके आसपास में प्रकट होता होगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको। कितने लोग मंदिर में आते हैं देखो, उसे प्रवचन चल रहा है, कितने लोग बैठते हैं आते हैं, देखते हैं ठीक है वही बोल रहा है, तो अपने दर्शन करके चले जाते हैं। देखा ना आपने कितने लोग खड़े थे चले गए, आध्यात्मिक जिज्ञासा जिनको है वही बैठे हुए हैं, और उसके में अंदर अलग अलग परिमाण है उसके, किसी को ज्यादा है कोई ध्यान से सुन रहा है, कोई इधर उधर देख रहा है, कोई सो रहा है, कोई देख रहा है कभी खत्म होगा प्रसाद कभी होगा अनेक सारे प्रश्न मन में उठते रहते हैं, तो क्योंकि वो अलग अलग प्रकार के जिज्ञासा है, लेवल डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन जिज्ञासा एक प्रकार की ऐसी होती है कि आप बैठेंगे तो सब प्रसाद वसाद सब भूल जाएंगे, प्यास भूख सब भूल जाएंगे, लगेगा कि चलते रहना चाहिए बस मुझे ये अमृत प्राप्त करना चाहिए, आई वॉन्ट टू ड्रिंक दिस नेक्टर, तब जाकर आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो उद्धव जी ऐसी परिपूर्ण अवस्था में थे इसलिए कृष्ण ने उनको पूरा अपना हृदय का ज्ञान दे दिया उसको। जैसे अर्जुन भी पहले क्यों नहीं गीता बताया? अरे हाँ बोलेंगे, इतना क्या टाइम था बोलने का, इतना साथ में बैठते उठते खेलते थे, तब प्रश्न पूछ लेते थे ना कि युद्ध होने वाला है, पता नहीं भीष्मदेव भी कहाँ युद्ध करेंगे, तभी पूछ लेते, तो विस्तार में दिन भर बैठ के बीच में लंच ब्रेक लेके भी कर सकते थे। लेकिन जिज्ञासा जब उत्पन्न हुई तब कृष्ण ने बोलना शुरू किया। और ये भी सोचिए आप भगवद गीता के बारे में, पहले अध्याय में कृष्ण ने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्यों, जरूरत नहीं थी, वो ही बोल रहा था। उसको बहुत सारी बातें बोलनी थी, ऐसा वैसा, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है वैसा नहीं करना चाहिए। बोले ठीक है बोलते जा। जब उसका पात्र रीता हो गया तो उसको प्रश्न आया कि सब बोलने के बाद भी मेरे मन में कुछ गेन नहीं है, तो बोले शिष्यस्ते हम स्यादि माम प्रपन्नम, हे भगवान इतना सब बोलने के बाद भी मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, पूरा मेरा मान भटका हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि मेरा चर्म भी जल रहा है, मेरे हाथ से गांडी धनुष फिसल रहा है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ धनुष त्याग करके, अब बताओ मुझे क्या करना है। ये योग्य स्थिति थी। तब भगवान का वक्तव्य शुरू हो गया, तो क्या बोले? तो मूर्ख हो, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, पंडित की बातें कर रहे हो, हाँ गता सुन गता शुमस नानु शोचंती पंडिता, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन जो विद्वान व्यक्ति को दुख नहीं करना चाहिए उस बेकार की बात पर दुख कर रहे हो, यानी कि एक बड़ा पंडित ऐसा दिखा रहे हो लेकिन हो नंबर वन के मूर्ख। यहाँ से शुरू हुआ। तो संवाद में भी जब तक एक स्थिति नहीं उत्पन्न होती है जिज्ञासा की, तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा होना बहुत आवश्यक है, और जिज्ञासा केवल मनुष्य के जीवन में हो सकती है, सभी जीवन में जिज्ञासा नहीं हो सकती। कुत्ता बिल्ली के जिज्ञासा एक ही होती है, कहीं हड्डी कहाँ मिलेगी, कुत्ती कहाँ मिलेगी, बस यही जिज्ञासा होती है। आत्मा के विषय में जिज्ञासा केवल मनुष्य जीवन में हो सकती है, इसलिए हमारा जीवन भाग्यवान है, मनुष्य जीवन में ही यात्रा हो सकती है। तो कुत्ते भी वृंदावन धाम में रहते हैं और जब पंडरपुर में रहते हैं, धाम में होने का लाभ उनको है, लेकिन आपको धाम में होने का लाभ जितना है उनका उतना नहीं, उनको नहीं मिलेगा उतना लाभ। हमारा लाभ जो है आध्यात्मिक, हमारी चेतना के स्तर पर डिपेंड होता है, कैसे चेतना अपने लाके यहाँ पर आए हैं। केवल आने से लाभ नहीं होता है, चेतना कैसे लेके आए वो पात्र है आपका, उसमें आपको आध्यात्मिक अनुभूतियाँ अमृत के रूप में प्राप्त होगी, और वो आपका जीवन का धन है। जो अभी प्राप्त करेंगे ना तो शाम को समाप्त नहीं होगा वो। आज जो आपने आध्यात्मिक धन यहाँ प्राप्त किया है, जीवन भर आपके साथ में रहेगा वो, कभी वो स्पेंड नहीं हो जाएगा, खर्च नहीं होगा वो। अरे वो पंडरपुर गए थे 2023 में फरवरी में, उसका लाभ मार्च में खत्म हो गया, अभी वापस जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है वो, तो बढ़ते वाला है, दिन दिन बढ़ते जाए। एनीवे इस श्लोक का भाव भी थोड़ा बोलना चाहिए। ये बहुत सारे बोध उद्धव जी को भगवान ने दिए हैं, बहुत सुंदर है, आप सबको पढ़ना चाहिए। और हमारे आचार्यों ने इसका उनके पूरा बड़ा अलग ग्रंथ लिखा है उसका, वो भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए तो उसका बड़ा ग्रंथ लिखा ना, अगर इतना नहीं होता तो छोड़ देते इसको इधर ही। तो इसमें क्या लिखा गया है इस बोध के रूप में, कि सूर्य जो होता है ना, सूर्य उसकी सेवा देखो कैसी है, वो नमकीन सागर से उसका बाष्पीभवन करता है, स्टेरिलाइजेशन, उसकी बाफ बनाता है, तो सॉल्ट नहीं आता है बाफ के अंदर, बाफ ऐसे हल्कियों को ऊपर जाती है, उसका बादल बनता है। क्यों बादल बना? सूर्य के मेहनत से वो नमकीन जल का बाष्प होकर बादल बना, तो बादल को हवा आगे लेके जाती है और जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ पर वर्षा होती है। वर्षा सॉल्टी वाटर की होती है क्या? मीठे जल की वर्षा होती है, वहाँ पर खेती होती है, लोग पानी पीते हैं, कुआं वहाँ सब जगह पर पानी पैदा होता है, नदी पैदा होती है, सब कुछ पैदा होता है। एंड में क्या होता है, वो नदी जो है दोबारा बहकर सागर में मिल जाती है, यानी एक साइकिल पूरा हो जाता है। तो सागर ने जो पानी उत्पन्न किया था मीठा पानी, वही वापस सागर में पहुँच जाता है। तो सूर्य ने अपने पास कुछ रखा क्या? सूर्य ने केवल सेवा की, यहाँ से उठाकर वहाँ पहुँचाया जहाँ जरूरत थी, और वहाँ से भी वापस कर दिया उसको उपयोग करने के बाद। बहुत सुंदर भावना है जो व्यक्त की यहाँ पर, जो भाव यहाँ व्यक्त किया है बहुत सुंदर है। तो सूर्य की ये निस्वार्थ सेवा है हमारे लिए, सूर्य को हम टैक्स नहीं पे करते हैं, ऊपर से वो सूर्य प्रकाश और उष्णता दे ही रहे हैं, हेल्थ भी दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, ये भी सेवा कर रहे हैं, आरोग्य भी आपका संपन्न कर रहे हैं वो, लेकिन वो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। तो वैसे ही भगवान कह रहे हैं वैष्णव भी ऐसे होते हैं कि वो मुझसे ही सब चीज लेते हैं, वाचा भी मैंने दी है, बुद्धि भी मैंने दी है, बहुत सारी चीजें, ज्ञान भी मैंने दिया है, आरोग्य भी मैंने दिया है, सब कुछ मैंने दिया है, उसका पूरा उपयोग वो पतितों के उद्धार के लिए करते हैं, प्रचार के लिए करते हैं। जहां पर अभी भी दिखाई पड़ता है कोई जरूरतमंद है तो उसको तुरंत दे देते हैं, यहां तक कि धन भी दे देते हैं, अपने पास कुछ संचय नहीं करते हैं। तो संचय प्रवृत्ति के ऊपर भी यहां पर थोड़ी टीका की है। संचय प्रवृत्ति व्यक्ति को बहुत संकुचित बना देती है। संचय यानी जमा करना, केवल धन की नहीं, प्रॉपर्टी है और किसी भी संग्रह, शिष्यों को जमा करना, अनुयायियों को जमा करना, वस्त्रों को जमा करना, अलंकार को जमा करना, कीर्ति को जमा करना, जो भी चाहिए इतना कीर्ति और मिलते और मिले और मिले, किसी प्रकार का संचय करने से, इंग्लिश में एक वर्ड है प्यूट्रीफैक्शन, मतलब सड़ना, तो सारी वस्तुएं सड़ जाती है और चेतना को भी ऐसे ही प्यूट्रीफाइड बना देती है। तो भक्तों को क्या करना चाहिए, अगर आपको प्रगतिशील मार्ग में रहना है तो कभी भी आपके आवश्यकताओं के परे आपके पास जो भी कुछ है उसको वैसे ही रखे रहना ही चाहिए। सदैव भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में लगाते रहना चाहिए। जो हमारी आवश्यकता के बाद भी हमारे पास धन है कर्मों के अनुसार, वो अगर भगवत सेवा, भक्त सेवा में नहीं लगाएंगे तो वो जरूर आपके हृदय में कलह पैदा करेगा, झगड़ा पैदा करेगा, दुख पैदा करेगा, भ्रम पैदा करेगा, दाम्भिकता पैदा करेगा। क्योंकि किसी भी प्रकार के धन का ये लक्षण है कलयुग में, वो दाम्भिकता प्रणाम निर्माण करेगा, ढोंग निर्माण करेगा। और सबसे बड़ी बात जो है, ढोंग तो अपने पास रहेगा लेकिन कलह होगा तो दूसरा व्यक्ति भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। और कलह जब होता है तो एक के साथ नहीं होता है, कलह वाला व्यक्ति जो है वो 50 लोगों के साथ कलह निर्माण करता है, जहां जहां जाएगा झगड़ा करेगा, वो पंडरपुर में आएगा तो झगड़ा करेगा, वृंदावन जाएगा तो भी झगड़ा करेगा, वहां से रिक्शा वाले से करेगा, पांडा से करेगा, या जो मिलेगा वो झगड़ा करेगा। क्योंकि झगड़ा लो प्रवृत्ति उसके साथ में होती है। वो क्यों होती है, जिसका धन, जिसका संपत्ति, उसकी आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद में भी बचा हुआ है, वो भगवान की सेवा में नहीं है, वैसे व्यक्ति के अंदर कलह प्रवृत्ति निर्माण होती है। इसलिए हमारे पास अगर गृहस्थों के पास स्टॉक है, समझो पैसे का हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, प्लान ये होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्यों किया है। रूप गोस्वामी कहते हैं बुढ़ापे का भी सहारा होना चाहिए, उसके लिए भी किया है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए किया है। हम बुढ़ापे में भी आराम से क्यों रहना चाहते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में हमको प्रचार करना है, भगवान की सेवा में रहना है, उसके लिए धन की आवश्यकता है, किसी के हमने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, हम ही व्यवस्था करेंगे उसकी। और बाकी सारा धन जो है वो भगवत सेवा में लगना चाहिए, मंदिरों में, पुस्तक वितरण में, प्रचार में, माला बांटने में, प्रसाद बांटने में, दान देने में, मंदिर बन रहा है, अस्पताल बन रहा है वहां पर देने में होना चाहिए। संचय करेगा व्यक्ति तो खुद वो संकोच से भर जाएगा और उसकी प्रगति कुंठित हो जाएगी। वैष्णव जन जो है, संत जन, ये इसका उदाहरण है, वो कभी भी संचय नहीं करते। गृहस्थ हुआ तो क्या हुआ, क्या लगता है आपको, वशिष्ठ मुनि गृहस्थ थे ना, कब से पता है, जब सृष्टि का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ ना, ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ, पहला सत्ययुग आरंभ होने जा रहा है, तब से वशिष्ठ मुनि ब्रह्मा लोक से पृथ्वी पर आए हुए हैं ब्रह्मा जी की इच्छा के अनुसार। और रघुवंश के, यानी जो वंश बाद में रघुवंश बना, श्राद्धदेव मनु का जो वंश है, उस तब से वो पुरोहित हैं, और बाद में रघु राजा के पुरोहित बने, क्योंकि वो सारे कितने अनंत पीढ़ियां रहे, वो श्राद्धदेव मनु के बाद में वैवस्वत मनु कितने पीढ़ियों के बाद रघु राजा बने, फिर राम राजा बने, फिर उसके बाद में राम के वंशज राजा बने, अभय कर्ण, कितने वंशज है, अंशुमान, सगर, सब राजा बने, सबके पुरोहित। तो अभी आप केवल राजा दशरथ का एक उदाहरण लीजिए, दशरथ राजा का जब भी पुत्र कामिष्टि यज्ञ हुआ तो वो उसने किया था, ऋषिशृंग मुनि ने किया था, लेकिन बाकी सारे घर के जितने भी थे, गृह प्रवेश और बालक और जितने भी विधि थे, वशिष्ठ मुनि ने किए। तो आप क्या लगता है आपको, वशिष्ठ मुनि को दक्षिणा में क्या क्या मिला होगा, सोने के पात्र मिला करते थे सैकड़ों, हजारों गायें मिलती थी उनको दान में, आप यकीन नहीं कर सकते। हमारी जब, मैं जब पुरोहित बनकर यज्ञ करता हूं तो मुझे धन मिलता है तो वो तो तुच्छ है उसके सामने, एक कर्ण भी नहीं है वो। लेकिन आपने कभी देखा है कि राम का नामकरण विधि किया और वशिष्ठ मुनि झोपड़ी से महल में रहने गए, कभी पढ़ा है आपने इसे, कभी इतना धन संपत्ति मिली तो बोले झोपड़ी में क्यों रहना है, महल बांधेंगे और पत्नी को भी महल में रखेंगे, नहीं वो झोपड़ी में ही रहे। इतनी सारी पीढ़ियों का उसने उन्होंने पौरोहित्य किया, इतना सारा राजाओं का पौरोहित्य करने के बाद राजा जब दक्षिणा देता है तो क्या दक्षिणा होती है। लेकिन कभी वशिष्ठ मुनि को देखा आपने, उनकी भौतिक स्थिति में फर्क पड़ा या कहाँ से कहाँ चले गए वो? नहीं, जितना भव्य दिव्य दक्षिणा मिलती थी उसी समय उसको दान करते थे वो तुरंत। केवल आवश्यकता में क्या है, तन मन को एकत्र रखने के लिए, भक्ति के लिए, सेवा के लिए क्या आवश्यक है उतना ही रखते थे वो, बाकी सब दान देते थे। अरे युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में भी देखेंगे ना, सोने के थाली में खाना खिलाकर वो डिस्पोजेबल हुआ करता था, वो ऐसे पड़े रहते थे वहां पर खाकर फेंके हुए, उसके ऊपर स्वर्ण के पात्र और रत्न हीरे मोती ब्राह्मणों को दान देते थे। इतना ऐश्वर्य था, इतना ऐश्वर्य संपन्न राजा के पास इतने यज्ञ करने के बाद भी अगर वशिष्ठ मुनि अपनी जगह पर ही, इसका अर्थ क्या होता है? विरक्ति। हर वस्तु को भगवान की सेवा के लिए रखना, उसके ऊपर की जितनी वस्तु है उसको दे देना। और मैं आपको बता रहा हूं, दान देने से कोई व्यक्ति गरीब नहीं होता। ये एक बड़ी गलत फहमी है कि इतना देंगे जन्माष्टमी को पता नहीं आगे क्या होगा, फिर लोन कैसे पेमेंट करेंगे। अरे भगवान को जब हम देते हैं तो भगवान हमारे ऋणी हो जाते हैं, और भगवान कभी भी आपका ऋण रखना नहीं चाहते, आपको दुगुना चौगुना वापस दे देते हैं। इमेजिन, अब यहाँ पर मंदिर बन रहा है इतना बड़ा, हाँ हमारे लिए गौरव की बात है, उसमें हम दान देंगे तो ये मत समझना कि अरे अरे अभी यहाँ पर भी देना है, अरे उधर भी देना था, अरे इधर भी मांग रहे हैं, उधर भी देना है, अभी वापस पंडरपुर का भी और मंदिर आएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ देना है, हम तो कंगाल हो जाएंगे। लेकिन कोई कंगाल नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भगवान को देता है भगवान उसको भर भर के लौटा देते हैं। भगवान आपका ऋण रखना नहीं चाहते अपना, इसलिए खुलेआम से दे दो, हृदय से दे दो, क्योंकि भगवान के पास सब कुछ है। भगवान का ही दिया हुआ आप निकाल के दे रहे हैं, भगवान का ही दिया हुआ अपना समझ के अपना बनाकर फिर देने का नाटक कर रहे हैं, और पावती भी लेते हैं उसके अंदर, और एटीजी भी चाहते हैं उसके बाद। तो ये जो नम्रता है ना, और ये जो जरूरत के अनुसार रहना और जरूरत के बिना संचय नहीं करना, ये बात यहां कही गई है। ऐश्वर्य को इस तरह बांट दे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन असीम रूप से फैल जाए, ऐसे लिखा है इसके अंदर। सूर्य से हमको यही शिक्षा लेनी चाहिए, भौतिक संपदा का केवल संग्रह न करते रहे हम, जमा करके रहो, जमा करते रहो। बचपन में हमारा एक ड्रामा था, उसके अंदर वो रात को आदमी बैठ के वो टंग 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 करके कॉइन गिनता था, रोज प्रॉपर्टी के कैलकुलेशन करता था, ना खर्च भी कर रहा है ना कुछ कर रहा है, उसको केवल संदूक खोल के कॉइन गिनता था, उसकी आवाज़ आती थी बस, और मर जाता था उसके बाद में, मर गया उसके बाद। ऐसे धन का लाभ क्या है? वैसे भी बच्चे और आपके परिवार के लोग उसको भोगने वाले हैं, आपके आधिपत्य में उसको भगवान की सेवा में लगा दो, उनके लिए भी कुछ रखो। लेकिन संचय करने वाला व्यक्ति ना खुद उसको एंजॉय करता है ना दूसरों को एंजॉय करने देता है, ये ध्यान रखना। स्वार्थी संचय कर रहा है वो, लेकिन ना वो खुद एंजॉय कर रहा है ना दूसरों को करने दे रहा है, बस पकड़ के रखा है ऐसा, मेरा मेरा, अरे मेरो मेरो कहो छोड़ दे या ना दानी को, भजन कर राधा रानी को, मेरो मेरो कहो, अरे ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, अरे मेरो मेरो कहो छोड़ दे या ना दानी को, भजन कर राधा रानी को, हाँ राधा रानी को भजन कर महारानी को। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। आपको लगता होगा प्रभु जी हमारा खिस्सा खाली करने बैठे हैं, लेकिन डरो नहीं, जो भगवान के लिए जेब खाली होती है वो तुरंत भर जाती है। बोलो प्रभु जी, मराठी सांगा, हमारे कहते हैं मराठी आम्हाला येतं, खरा प्रश्न ऐकून जा। सांगणाऱ्या माणसाने मनापासून सांगावं, सांगताना पण संकोच करू नये, सांगू का नको सांगू का नको त्याचा परिणाम नाही होत. एकदम दिल खोल के बोलना चाहिए. जब को आपको लगता है कि ये इसके कल्याण की बात है तो बिना संकोच ठोक देना चाहिए. चाहे बंदूक लो या मशीन गन लो लेकिन ठोको जरूर. और आणि
जसे की कोणी निरीक्षण करून आपल्याला समजून येते की बाबा हे रोज जास्त आहे, इतकं कमी आहे, इथं पोहोचणार नाही तिथं पुढे. मग तसं असं त्याला सांगायला की असं कुठं वाटत असते की बाबा.
हां पण एक आहे, एक आहे तर चार लोक असतील ना आणि काही लोकांची जी इच्छा असते ती जास्त असते कमी असते. तर जास्त इच्छा ज्यांची आहे त्यांच्याकडे पहिल्यांदा जायला पाहिजे. तसं हॉस्पिटलमध्ये चार पेशंट आय सी यूमध्ये असतात आणि तीन पेशंट तर गेलेच आहेत, ते वाचू शकत नाहीत. एक वाचू शकेल, डॉक्टर कुठे जातो? जो वाचेल त्याच्याकडे जातो, है ना. जो वाचू शकतो त्यांच्याकडे डॉक्टर जातो कारण त्याची एनर्जी तिथे उपयोगी होईल, तो जगेल तरी. हे तीन ठिकाणं जाऊन फायदा नाही, तो पण मरेल, हे पण तिघही मरतील. म्हणून आपण प्रचार करताना जिज्ञासू जास्त कोण आहे तिकडे जायचं, मग लगेच त्याचं फळ भगवंताला प्राप्त होतं. ठीक आहे. आणि ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की yeah.